SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आज हमारे साथ जुड़े हैं नरेश गुलाटी, जिन्होंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में आए कई स्टूडेंट्स की कई प्रकार से मदद की है. नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. कैसे हैं आप?
थैंक यू सो मच. बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू.
शुरुआत करेंगे आपकी शुरुआत से. जब आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आए, किस प्रकार की जर्नी थी?
जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था 95 में, तो मैं RMIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था एजेंट के थ्रू. जर्नी कैसी थी, जैसे आमतौर पे हर एक स्टूडेंट की होती है, मुझे इन्फॉर्मेशन जनरली, आई वोंट से आमतौर पे, जनरली होती है. मुझे एजेंट ने कुछ बातें बताई जिसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चले जाऊंगा. तो जब मैं आया था, जो मुझे बताया गया था और जो मैंने पाया, उसमें जमीन आसमान का अंतर था. मेरे फादर ने मुझे कर्जा लेके यहाँ पे भेजा था प्राइवेट फाइनेंसर से. सो बर्तन मांजे से लेकर बेंचों पे सोने से लेकर वो सफर शुरू हुआ. जब मैंने वहाँ पे, जब मैं पढ़ता था ना, आई यूज टू कम अक्रॉस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो उसी हालात में थे, पर वो रोते भी थे. तो उनकी समस्या, उनके हालात मेरे से भी फाइनेंशियली बैकग्राउंड में ज्यादा बुरे थे. सो आप तो मैं स्ट्रगल करता था, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आप एक कश्ती में होते हो, आपके साथ जो लोग होते हैं, आप उनका दर्द थोड़ा सा समझ सकते हो. तो शायद मैं कहीं पर रिलेट कर सकता था. तो अब मेरे पास तो कुछ च्वाइस ही नहीं थी. आगे जाता तो कुआं, पीछे जाता तो खाई. तो मुझे तो ऑप्शन जाने की तो थी नहीं, बिकॉज मैं कर्जा कैसे उतारता अपने फादर का. तो मैंने फिर क्या किया, मैंने यही डिसाइड किया, मैं तो आई एम गोना डू माय बेस्ट. उन दिनों में जब मैं स्टूडेंट्स के साथ था, मिलता था, काफी दोस्त थे, सब मिलजुल के रहते थे. हालात उन दिनों में डिफरेंट थे. So, सारे सोशली, हमारा सोशल मीडिया तो नहीं होता, मैं 95 की बात कर रहा हूँ. तो सोशल मीडिया नहीं था जिसमें हम करें, मोबाइल टेलीफोन भी कुछ ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग. सो उन दिनों में बस फिर देखा कि ये, मैं एक्चुअली एक काम मैंने शुरू करना था अपने फादर के लिए कि चलो अब मैं तो यहाँ पे सेटल हो गया. मैं IT प्रोग्रामर था यहाँ पे. Tattersalls एक कंपनी है, शायद आपने गेम भी सुनी होगी, पावर बॉल्स. सो आई वर्कड ऑन द पावर बॉल गेम लॉन्च में, मैं इन्वॉल्व था उसका फ्रंट एंड लिखने में. सो फाइनेंशियली ठीक कर रहा था, तो कंपनी मुझे स्पॉन्सरशिप करने के लिए भी तैयार थी, पर मैं कमिटेड था कि मैं अपने फादर को थोड़ा बिजनेस सेट कर दूंगा और थोड़ा सा अपने वापिस जाके देश में रहेंगे, कर लिया यहाँ पे जो करना है. तो पैसे इकट्ठे मैंने इतने कर लिए थे काम करके पढ़ाई के बाद कि मैं जो कर्जा था वो उतार सकता था इंडिया में. तो मैंने कहा मैं चलो जाके ना फादर को बिजनेस शुरू करवा दूंगा. पर जब मैं उसमें घुसा, मैं लोगों को, स्टूडेंट्स को मिलता था, तो मुझे लगता था यार इसको जाना नहीं चाहिए, ये सरवाइव नहीं कर सकता. तो मैं बड़े स्टूडेंट्स को मना कर देता था. तो मुझे इंडस्ट्री के लोग कहते तू पागल है, तुझे बिजनेस नहीं करना था. तो ये इस समय मैंने ओशियानिक कंसल्टेंट शुरू किया था. SN1 तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया कोई सर्वाइवल के लिए. तो उसके बाद गॉड वाज काइंड, वापिस मुड़के नहीं देखना पड़ा. हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पे भेजे. पर एक बात रखा जरूर जहन में और अपने, जो कहते हैं एथिक्स पे, हमने कभी स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया अपनी एजेंसी में. स्टूडेंट्स को वही देते जो उनके हक में होता है.
कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते आ रहे हैं? ये एक चीज, ये जो चैलेंजेस है, ये कभी बदले नहीं है इतने सालों में.
ये बिल्कुल ठीक है, और ये बदलेंगे भी नहीं. मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के चैलेंजेस हैं, देखिए अगर हम इसको सिर्फ हिंदुस्तान के, भारत की तरफ से देखें, है ना, जो वहां पे आते हैं, क्योंकि वहां से वीजा लेना वो ऐसा नहीं है जैसे अमेरिकन सिटीजन को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, पढ़ने के लिए वीजा लेने का जरूरत पड़ेगी. ना ही ये कोई ऐसा जो कैनेडा से स्टूडेंट आ रहा है. इंडिया कि वीजा की रिस्ट्रिक्शन और असेसमेंट क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके लिए क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू यूज द सर्विसेज ऑफ एन एजेंट। अब वो जब एजेंट के पास जाते हैं, क्या वो एजेंट सब कुछ बता रहा है? और एजेंट से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो सब कुछ बताए, उसको क्या पता कि इसको क्या चाहिए। आज की डेट में दो चीजें होती हैं, क्या एजेंट ईमानदार है और क्या स्टूडेंट ईमानदार है। जब मैं आया था, स्टूडेंट ईमानदार थे, जनरली पढ़ने आते थे, उनका ऑब्जेक्टिव था पढ़ना। आज की डेट में जो स्टूडेंट आते हैं, उनका शायद ऑब्जेक्टिव काफी हद तक है कि यहाँ पे रहना। और ये हमारी रिसर्च जो एसेंट वन ने अभी की, उसमें भी ये बड़ा क्लियर हो गया कि जो स्टूडेंट आना चाहते थे वो यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया बड़ा खूबसूरत और अच्छा देश है, सेफ कंट्री है, हम सब इसीलिए यहाँ पे रहते हैं। तो वो क्या होता है, जब एजेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप बोल सकते हो अनस्क्रूपुलस, राइट, दे आर नॉट गिविंग ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। जब वो आते हैं ऐसा काम करते हैं, तो वो बेचारे स्टूडेंट उस गलत इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे एजेंट, बहुत सारे अच्छे एजेंट्स हैं, अच्छे एजेंट और बुरे एजेंट का फर्क देखना चाहिए सबको, स्टूडेंट को। और इन्फॉर्मेशन, जब तक एक स्टूडेंट को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जो अगर वो डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यू नो, एक सिंपल सा प्रियंका जी, एक फंडामेंटल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन के बेस से डिसीजन लोगे तो फ्यूचर भी गलत होगा। और ये आप देखते हो रोजमर्रा में, देखते हो कितने स्टूडेंट्स को कितनी समस्याएं आती हैं इसमें। अब आज की डेट में स्टूडेंट कहते हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ के मैं वहां पे रहना चाहता हूँ। अब इन द मीन टाइम यहाँ पे आके देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो शायद गलत है, या यहाँ पे आते गवर्नमेंट ने, सरकार ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली है। So, ये सारा कुछ नाउ इट इज वेरी फ्लूइड एंड इट्स क्वाइट डायनेमिक। मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ, और उसमें मेरी थोड़ी सी सोच डिफरेंट है। ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड आपको मैं एक डिफरेंट एंगल से बताता हूँ, जो कि साधारण ऑडियंस भी समझ सके और स्टूडेंट भी समझ सके। अब देखिए, जब जो हमने अभी रिसर्च की है, एसेंट वन ने, हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने चार देशों में रिसर्च करवाई है, चाइना में, इंडिया में, फिलीपींस में और कोलंबिया में, वो ये बताने के लिए, देखने के लिए कि स्टूडेंट चाहता क्या आखिर, जब वो आना चाहता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और जब आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है जब पढ़ रहा है, और जब वो पढ़ाई खत्म कर ले तब क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके बेस पे जो सोच के वो ऑस्ट्रेलिया था, क्या उसने अचीव किया कि नहीं, उसको हमने, उसका मापदंड देखने के लिए हमने एक सर्वे करवाया यूगोव के थ्रू, ये दुनिया की वन ऑफ द वेरी फेमस एंड मोस्ट क्रेडिबल एजेंसीज में से एक आती है। अब उसमें एक पता लगा कि लोग रेजिडेंसी लेने आते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी चेंज के लिए एक बहुत बड़ा एंगल लिया कि परमानेंटली टेम्पररी लोग यहाँ पे रहते हैं। कहने का मतलब है लोग अपना टेम्पररी वीजा एक्सटेंड कर जाते हैं, स्टूडेंट वीजा हो गया किसी प्रकार का भी टेम्पररी, जिससे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ता है, जिसके कारण वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो रही है, और लॉट ऑफ अदर रीजन सिमिलर टू दैट। ये कहना, ये बात सच है कि ये हो रहा है, बट ये ब्लेम करना कि हम इसको लेकर या हाउसिंग क्राइसिस को लेकर पॉलिसी चेंज करें, उनको ब्लेम करें, वो शायद मेरे विचारों से डिफरेंट है। देखिए, आप मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं ना, उसके ऊपर एक, जब आप खरीदते हो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ कंज्यूमर लॉज होते हैं ना, आप लेते हो 2 साल की, ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर लॉ में भी काफी चीजों की गारंटी होती है, बट इसमें भी तो ऑस्ट्रेलियन सरकार को करना क्या चाहिए मेरे विचार में, कि जब वो स्टूडेंट ने डिसीजन लिया, जब वो एंटर किया ऑस्ट्रेलिया में, उस दिन उसके सर्कमस्टांसिस कम से कम किस माइग्रेशन कैटेगरी में आना चाहता है, ऑक्यूपेशन में, उसको फ्रीज कर दें कि भाई इसको कल चेंज होगा तो हम आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, हाँ आपकी एज चेंज होगी तो हम उसको डिस्काउंट नहीं करेंगे, आप इंग्लिश में पास नहीं होगे वो हम डिस्काउंट नहीं करेंगे, पर ये ऑक्यूपेशन को हम लॉक कर देंगे, ऑक्यूपेशन के पॉइंट भी लॉक कर देंगे, उसके पास पॉइंट भी लॉक कर देंगे। कम से कम लोग उस चीज को विक्टिम तो नहीं बनेंगे। और ये जो बार बार एक कोर्स के बाद दो कोर्स, फिर दूसरा कोर्स, फिर तीसरा कोर्स, फिर चौथा कोर्स करते रहते हैं बेचारे, वो नहीं होगा, ये कोई मजाक नहीं है। उनके माँ बाप से पूछो जो 8-8, 10-10 साल यहाँ पे बैठे, इस उम्मीद में बैठे कि हम इसको, ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाएंगे। अब एक मोमेंट के लिए देखिए, मुझे नहीं मालूम आप किस वीजा पे आए हैं, लेट्स से दो लोग, दो तरह के कैटेगरी में हम दुनिया को डिवाइड कर लें। एक जो बाहर से माइग्रेशन आते हैं, स्किल माइग्रेशन आते हैं, ठीक है, स्किल माइग्रेशन के अंदर आते हैं, एक जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आते हैं। फर्क देखिए इसमें, प्रैक्टिकल डिफरेंस, जो लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, पहली बात वो अपनी फीस अपनी जेब से दे रहे हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, और 2-3 साल पढ़ेगा उसको लोकल कल्चर पता लग गया, उसको यहाँ की भाषा रहने सहने का तरीका पता लग गया, उसको यहाँ पे उठने बैठने थैंक यू प्लीज वाली चीजें सारी समझ आ गई जो हम पहले दिन आते हमें नहीं आती। अब वो बंदा यहाँ की क्वालिफिकेशन भी है उसके पास, उस स्टूडेंट के पास। सो फ्रॉम द लोकल स्किल्स टू सोशल इंटीग्रेशन टू लोकल लैंग्वेज एंड लोकल कल्चर, वो सारा कुछ उसने अपने खर्चे पे सीखा। और स्किल माइग्रेंट्स जब आते हैं वो अपने खर्चे पे नहीं करके आते, एक तो उनके पास इंटरनेशनल स्किल्स होते हैं, लोकल स्किल नहीं होते। मैं ये नहीं कहता वो बुरे होते हैं, ये नहीं है मेरा, मेरा पॉइंट है अब सरकार को देखो, ये नहीं देखना चाहिए कि जो लोग अपने खर्चे पे आके पढ़ रहे हैं, अपने खर्चे पे आके सोशली इंटीग्रेट हो रहे हैं, अपने खर्चे पे आके उन्होंने यहाँ का कल्चर सीख लिया, उठना बैठना सीख लिया, वो ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं सोसाइटी को। उनको सरकार को चाहिए दे शुड लुक एट कन्वर्टिंग देम टू बीइंग ऑस्ट्रेलियंस, बिकॉज वो हमारी सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है रादर देन फ्रेशर। और मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर नहीं आने चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से अगर मुझे किसी एक चीज का चुनाव करना पड़े तो आई विल चूज द स्टूडेंट्स हु कम एंड स्टडी एंड डू अ डिग्री एट देयर ओन कॉस्ट एंड दे वर्क, दे इंटीग्रेट, दे बिकम लोकली यू नो अकस्टम टू द लोकल कल्चर, फूड एंड एवरीथिंग, दे आर मोर लाइकली इन माई व्यू टू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑस्ट्रेलिया देन अदर पीपल।
इस अंश में हम बातचीत कर रहे हैं श्री नरेश गुलाटी से, जो एसेंट वन के सीईओ और फाउंडर हैं। भारत से यहाँ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वीजा के बारे में अक्सर कौन सी गलती कर बैठते हैं?
देखिए, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स सबसे बड़ी गलती, फ्रॉडलेंट मींस। आप एक बार झूठ बोलोगे तो बार बार झूठ बोलना पड़ेगा उस झूठ को छुपाने के लिए। अगर जीवन को इन लाइफ आल्सो अगर आप उसको सिंपल रखना चाहते हो तो इट इज वर्थ कीपिंग थिंग्स ऑनेस्ट, देन यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, यू नो। ऑन अ लाइटर नोट, मेरे अनुसार ये जो झूठ बोलते हैं लोग ना, ये बहुत मेहनती होते हैं। बिकॉज अगर आपने बोल दिया यार बार सुबह है और सुबह थी, तो बात खत्म हो गई। और वो बेचारा जो सुबह को रात प्रूफ में करने लगा होगा, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत की जरूरत नहीं है। जब ये फ्रॉड कागज इकट्ठे करते हैं शॉर्टकट के लिए, वो कोई अच्छी बात नहीं है। एक बार पकड़े गए ऑस्ट्रेलिया 10 साल का बैन लगा देता आपका, और क्या जरूरत है? अगर जब आप क्वालिफाई नहीं करते तो नहीं आओ, कुछ और सोचो। और यहाँ पे दे शुड बी एजेंट विद देयर एजेंट, एंड एजेंट शुड बी ऑनेस्ट ऑल्सो। ये दोनों चीजों को होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं दुनिया में। एक कहते हैं मैंने बाहर पढ़ने जाना है, दूसरे कहते हैं मैं बाहर जाऊंगा पढ़ाई के रास्ते। दोनों के मोटिवेशन डिफरेंट है। एक कहते हैं मैं पढ़ाई करने जाऊंगा, दूसरा कहते हैं मैं बाहर जाऊंगा पढ़ाई के रास्ते। उसने रास्ता ढूंढा पढ़ाई, पढ़ाई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आपका पढ़ाई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो डोंट कम एज अ स्टूडेंट, बिकॉज इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम मनी, और आपके माँ बाप की सारे जीवन की कमाई कुएं में जाएगी। क्यों ऐसा करना? माँ बाप ने इतना पैसा कमाया, इतनी मेहनत की, और हम उसका खराब कर दें, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। किसी भी तरह से, किसी तरह की सेंस नहीं बनती है।
अभी जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं नरेश जी, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सिर्फ ये बोलूंगा, देखिए पीआर आ जाए अच्छी बात है, पर आपने सारे डिसीजन पीआर के बेस पे नहीं लीजिए। अगर मैं आज तक के कानून की बात करूं या कुछ ऐसी चीजें देखूं, जैसे मैंने पहले कहा मैं माइग्रेशन एजेंट तो नहीं हूं, माइग्रेशन के बारे में मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जरूर जानता हूं प्रैक्टिकली आफ्टर हैविंग वर्क्ड इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 28 इयर्स, आप जब डिसीजन लेते हो और जब आपने ग्रेजुएशन करनी है, गोल पोस्ट मे हैव चेंज्ड। उसमें ये हो सकता है जो उस समय जो चीजें जिसपे रेजिडेंसी मिल रही थी 3 साल बाद ना मिले। आप खाली रेजिडेंसी के बेस पे कोर्सेज चूज नहीं कीजिए, आप चूज कीजिए जो आपके करियर में हेल्प करे। कि खुदा ना वास्ता खासता आपको वापस जाना पड़े या किसी और देश में जाना चाहिए, वो स्किल आपके काम आए जिंदगी में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सोचो कि मैं आऊंगा तो पीआर मिल जाएगी। मिल गई तो अच्छी बात है, ठीक है, हमें करना है। हमें ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, एजेंट को मिलो, एजेंट से इन्फॉर्मेशन लो, उससे बोलो मुझे लिंक्स लो जी, मैं देखना चाहता हूँ, कुछ वीजा ऑफिस की वेबसाइट जाके देखो, कुछ सेल्फ स्टडी करो, आप गलत नहीं हो सकते। और अच्छे कोर्स का, अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करो, जितना अच्छा कोर्स, जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन, उतने बेटर चांसेस फॉर यू टू सेटल डाउन। बट इट नेवर कम्स विद गारंटीज, के गारंटी कभी भी नहीं होती, ना थी, ना है, ना होगी।
नरेश जी, आज आपने हमारे लिए ये समय निकाला और इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और सब श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
दोस्तों, आपको याद दिला दे कि इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है और कोई विशिष्ट सलाह नहीं है। अगर आप अपनी स्थिति से जुड़ी कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो आज ही अपने सलाहकार से संपर्क करें। इस पूरे साक्षात्कार को आप सुन सकते हैं SBS हिंदी की वेबसाइट www.sbs.com.au/hindi पर।
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.